नमस्कार भारत 27 अप्रैल दिन गुरुवार, मैं हूँ वात्सल्य राय। उत्तर कोरिया के परमाणु कार्यक्रम पर रोक के लिए दबाव बढ़ाने की तैयारी में अमेरिका।
I was encouraged that they chose to brief the entire Senate, and I think, you know, they...
भारत प्रशासित कश्मीर में फेसबुक, ट्विटर समेत कई सोशल साइट्स पर पाबंदी को लेकर क्या है लोगों की राय?
डिजिटल इंडिया के जमाने में किसी भी सोशल नेटवर्क को बंद करना का मतलब क्या है कि ये लोगों के एक्सप्रेशन को आगे आने नहीं देना चाहते हैं।
एमसीडी चुनाव में हार के बाद आम आदमी पार्टी ने फिर उठाए ईवीएम पर सवाल।
तो ये दरअसल मोदी लहर नहीं बल्कि ईवीएम लहर है और ईवीएम के मैनिपुलेशन की गंभीर आशंका इस वक्त सबके दिमाग में है।
और दुनिया जहान में बात फ्रांस के चुनाव की, लेकिन पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार, दिलनवाज पाशा से। उत्तर कोरिया के खतरे के मद्देनजर ट्रंप प्रशासन ने देश के सभी 100 सीनेटर को इस मुद्दे पर जानकारी दी है, जिसमें कोरिया से निपटने के लिए कूटनीतिक दबाव बनाने और आर्थिक प्रतिबंध लगाने की नीति भी जाहिर की गई है। इसका उद्देश्य उत्तर कोरिया पर अपने परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम को रोकने के लिए दबाव बनाना है। वाशिंगटन में बीबीसी संवाददाता का कहना है कि इस नीति का उद्देश्य चीन को उत्तर कोरिया पर दबाव बनाने के लिए मनाना भी होगा। वेनेजुएला ने कहा है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स से अपनी सदस्यता वापस ले रहा है। वेनेजुएला का कहना है कि ये संगठन उसके आंतरिक मामलों में दखल दे रहा है। OAS के वेनेजुएला में जारी संकट पर चर्चा करने के लिए आपात बैठक बुलाने के ऐलान के कुछ ही देर बाद वेनेजुएला की विदेश मंत्री डेल्ची रोड्रिगेज ने यह ऐलान किया है। विदेश मंत्री रोड्रिगेज ने कहा है कि उनसे राष्ट्रपति निकोला माडुरो ने कहा है कि वो बाहरी हस्तक्षेप से देश की रक्षा करें। वेनेजुएला के पड़ोसी देशों ने देश में बढ़ रहे तनाव को लेकर चिंता जाहिर की है। यहां सरकार विरोधी प्रदर्शनों में अब तक कई लोगों की जान जा चुकी है। बीबीसी से बात करते हुए ओएएस के प्रवक्ता सर्जियो जेलिनेक ने कहा,
There is an interruption of the functioning of democracy. There is no respect for the
यहाँ प्रजातंत्र के कामकाज में व्यवधान हो रहा है। विभिन्न ताकतों की स्वतंत्रता का कोई सम्मान नहीं है। न्याय व्यवस्था पर कार्यकारी शक्तियां पूरी तरह हावी हो गई हैं। न्यायपालिका कार्यकारी सत्ता पर निर्भर है और कार्यकारी अधिकारी वैधानिक शक्तियों का सम्मान नहीं कर रहे हैं। इसलिए लोकतंत्र के तीनों अंगों की स्वतंत्रता खतरे में है। शोधकर्ताओं का कहना है कि एक सस्ती और आसानी से उपलब्ध दवा बच्चों को जन्म देने के दौरान रक्तस्राव से होने वाली मौतों में एक तिहाई की कमी ला सकती है। लंदन के डॉक्टरों का कहना है कि यदि जन्म के 3 घंटों के भीतर टीएक्स से दवा दे दी जाए तो इससे दुनिया में जन्म देने के दौरान रक्तस्राव से होने वाली माँ की मौतों में भारी कमी आ सकती है। हर साल दुनिया भर में 1 लाख से अधिक महिलाएं जन्म के दौरान जान गंवा देती हैं। टीएक्स से दवा 1960 के दशक में एक जापानी दंपत्ति ने विकसित की थी, लेकिन वो उस समय डॉक्टरों को मां बनने वाली महिलाओं पर इस दवा का परीक्षण करने के लिए तैयार नहीं कर सके थे। तुर्की के पुलिस बलों का कहना है कि पिछले साल हुए तख्तापलट के नाकाम प्रयास के पीछे माने जा रहे धर्म गुरु से संबंध के शक में 9,000 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को निलंबित कर दिया गया है। इससे पहले बुधवार को देश भर में हुई कार्रवाइयों में 1,000 से अधिक पुलिसकर्मियों को गिरफ्तार किया गया था। नए आंकड़ों के मुताबिक यूरोपीय देशों ने बीते साल 7 लाख से कुछ अधिक लोगों को शरणार्थियों का दर्जा दिया है। ये संख्या 2015 के मुकाबले 2 गुनी से अधिक है। शरण पाने वाले लोगों में से लगभग 60% सीरिया के हैं। चिली में तानाशाह पिनोशे के कार्यकाल के शुरुआती दिनों में राजनीतिक विरोधियों की हत्याओं के मामले में देश की एक अदालत ने पूर्व सेना प्रमुख और 15 अन्य रिटायर सैन्य अधिकारियों पर मुकदमा शुरू किया है। सेना पर आरोप है कि 1973 में राजनीतिक बंदियों को हेलीकॉप्टरों के जरिए देश के दूरस्थ इलाकों में ले जाया गया, जहाँ उनकी हत्या कर दी गई। हिमालय की पहाड़ियों में करीब 47 दिन तक फंसे रहे ताइवान के एक पर्वतारोही को सुरक्षित बचा लिया गया है। बीबीसी समाचार।
बीबीसी हिंदी से दिन की पहली सभा नमस्कार भारत आप सुन रहे हैं रेडियो के साथ साथ bbchindi.com और मोबाइल पर भी लाइव। गुरुवार की सुबह नमस्कार भारत का सीधा प्रसारण सुन रहे हमारे कई श्रोता हो सकता है कि अखबार के पन्ने भी पलट रहे हो। सामने दिल्ली नगर निगम यानी MCD चुनाव नतीजे की खबर हो और वो ये जानना चाहते हो कि करीब 2 साल पहले दिल्ली में जीत का इतिहास रचने वाली आम आदमी पार्टी पिछड़ कैसे गई। इस पर आम आदमी पार्टी का क्या कहना है ये हम आपको सुनवाएंगे। हम आपको छत्तीसगढ़ के सुकमा भी ले चलेंगे, बात कश्मीर की भी होगी, लेकिन खबरों के सिलसिले की शुरुआत एक अंतर्राष्ट्रीय खबर से। अमेरिका उत्तर कोरिया के मिसाइल और परमाणु कार्यक्रम पर रोक लगाने के लिए उस पर दबाव बढ़ाने की तैयारी में है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रशासन ने उत्तर कोरिया के खतरे से निपटने के लिए जो रणनीति बनाई है उसकी जानकारी सीनेट के सदस्यों को दी गई है। ट्रंप प्रशासन आर्थिक प्रतिबंधों और कूटनीतिक प्रयासों के जरिए उत्तर कोरिया को घेरना चाहता है। पूरे घटनाक्रम की जानकारी दे रहे हैं दिलनवाज पाशा।
ट्रंप प्रशासन ने सभी 100 सीनेटरों को उत्तर कोरिया के खतरे के मद्देनजर जानकारी दी है। उत्तर कोरिया से निपटने के लिए ट्रंप प्रशासन ने अधिक आर्थिक प्रतिबंध लगाने और कूटनीतिक तरीके अपनाने की नीति भी जाहिर की है। इस नीति का उद्देश्य उत्तर कोरिया को परमाणु और बैलिस्टिक मिसाइल परीक्षण करने से रोकना है। पत्रकारों से बात करते हुए सीनेटर क्रिस कून्स ने कहा,
I was encouraged that they chose to brief the entire Senate.
उन्होंने समूची सीनेट को जानकारी देना तय किया है, यह जानकर मैं प्रोत्साहित हूँ। यह एक गंभीर ब्रीफिंग थी जिसमें यह स्पष्ट हो गया है कि जरूरत पड़ने पर सैन्य विकल्पों के लिए करने में कितनी गहराई से योजना बनाई जा रही है। जो कूटनीतिक रणनीति वो बना रहे हैं वो मेरे हिसाब से खतरे के मद्देनजर बेहद संतुलित और स्पष्ट है। इसी बीच प्रशांत क्षेत्र में अमेरिका के शीर्ष सैन्य कमांडर ने दक्षिण कोरिया में उन्नत मिसाइल रोधी प्रणाली स्थापित किए जाने का बचाव किया है। प्रशांत कमांड के मुखिया एडमिरल हैरी हैरिस ने अमेरिकी कांग्रेस से कहा है कि अमेरिका उत्तर कोरिया के मिसाइल खतरे से निपटने के लिए सर्वश्रेष्ठ तकनीक के साथ तैयार रहेगा। अमेरिका ने विमानवाहक युद्धपोत के साथ जंगी जहाजों का बेड़ा और परमाणु पनडुब्बी कोरियाई प्रायद्वीप में तैनात की है। उत्तर कोरिया ने विमानवाहक पोत कार्ल विंसन को डुबो देने की धमकी दी थी। एडमिरल हैरी हैरिस ने कहा,
We have ballistic missile ships in the Sea of Japan, in the East Sea.
हमारे पास जापानी सागर में बैलिस्टिक मिसाइलों से लैस जहाज हैं और ऐसे जहाज हैं जो बैलिस्टिक मिसाइलों के हमलों से बच सकते हैं। उत्तर कोरिया के पास कार्ल विंसन जंगी बेड़े को खतरा पहुंचाने वाली जहाज रोधी बैलिस्टिक मिसाइलें नहीं हैं। उत्तर कोरिया के मिसाइल और परमाणु परीक्षण करने की आशंकाओं के बीच कोरिया क्षेत्र में तनाव बढ़ता ही जा रहा है। अपनी जर्मन यात्रा के दौरान चीनी विदेश मंत्री वांग यी ने कहा है कि चीन नहीं चाहता कि उत्तर कोरिया परमाणु हथियार विकसित करे। उन्होंने ये भी कहा कि अमरीका और दक्षिण कोरिया को सैन्य अभ्यास रोकने चाहिए। वांग यी ने कहा, परमाणु परीक्षण करना जाहिर तौर पर संयुक्त राष्ट्र के प्रस्तावों का उल्लंघन है, लेकिन कोरियाई प्रायद्वीप में सैन्य अभ्यास करते रहना भी संयुक्त राष्ट्र की नीतियों के अनुरूप नहीं है। हाल के दिनों में कोरियाई क्षेत्र में अमेरिका और दक्षिण कोरिया की सेनाओं के अभ्यास और उत्तर कोरिया के इसकी प्रतिक्रिया में भारी सैन्य अभ्यास करने के बाद तनाव बेहद बढ़ गया है। अब देखना यह है कि ट्रंप प्रशासन की आर्थिक प्रतिबंधों और कूटनीतिक दबाव की नीति उत्तर कोरिया को रोकने में कितनी प्रभावी होगी।
रुख भारत का करते हैं। भारत प्रशासित कश्मीर में जारी तनाव के बीच कल राज्य सरकार के गृह विभाग ने एक आदेश जारी किया। इसमें 16 सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर पाबंदी लगाने की जानकारी दी गई। जिन साइट्स पर पाबंदी लगाई गई है उनमें फेसबुक और ट्विटर भी शामिल हैं। इस आदेश के बाद लोगों की क्या है राय बता रहे हैं श्रीनगर से माजिद जहांगीर अपनी इस रिपोर्ट में।
कल यानी बुधवार को राज्य सरकार के गृह विभाग ने एक आदेश में कहा है कि फेसबुक व्हाट्सएप ट्विटर समेत 16 सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर प्रतिबंध लगाया गया है और अगला आदेश आने तक ये पाबंदी 1 महीने तक होगी। ये कानून ब्रिटिश भारत के कानून इंडिया टेलीग्राफ एक्ट 1885 के तहत लिया गया है। ताहम कश्मीर के आम नागरिक व्यापारी और छात्र सरकार के इस फैसले पर तीखी प्रतिक्रिया जाहिर कर रहे हैं। श्रीनगर के रहने वाले एक आम नागरिक शाहनवाज रसूल कहते हैं,
डेट में आज डिजिटल इंडिया के जमाने में किसी भी सोशल नेटवर्क को बंद करना या इंटरनेट को बैन करना या किसी भी ऐसी वेबसाइट को बैन करना, इसका मतलब क्या है कि ये लोगों के एक्सप्रेशन को आगे आने नहीं देना चाहते हैं। सोशल मीडिया के बगैर भी बहुत सारे रास्ते होते हैं कि लोग इस एक्सप्रेशन को एक्सप्रेस कर पाते हैं, अपने जो भी उनकी एग्नी है, जो भी उनकी तकलीफ है, उनको एक्सप्रेस कर पाते हैं।
वहीं मीडिया से जुड़े लोग भी इस फैसले से खासे नाराज नजर आ रहे हैं। कश्मीर की एक पत्रकार रजिया नूर का कहना था,
इसे कोई मसला हल होने वाला नहीं है। एक तो कॉमन मासेस जो है वो सफर करेंगे ही करेंगे, और स्पेशली हम लोग।
एक और नागरिक खुर्शीद अहमद कहते हैं कि एक तरफ भारत के प्रधानमंत्री डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ कश्मीर में सोशल नेटवर्किंग साइट्स पर पाबंदी लगाई जा रही है।
एक तरफ से वो डिजिटल इंडिया की बात कर रहे हैं और जम्मू एंड कश्मीर में और खुसूसन वो कश्मीर डिवीजन में जो सोशल नेटवर्किंग साइट्स पे पाबंदियां आयद कर रहे हैं, ये बिल्कुल ये बात जाहिर करती है कि जम्मू कश्मीर के हालात या ये सिचुएशन या ये मसला बिल्कुल ये एक
सरकार की तरफ से यह फैसला एक ऐसे समय में सामने आया है जब मंगलवार को श्रीनगर में यूनिफाइड कमांड की एक आला बैठक राज्य की मुख्यमंत्री महबूबा मुफ्ती के नेतृत्व में आयोजित की गई थी। इस बैठक में घाटी में आइंदा 3 महीनों के लिए सिक्योरिटी एजेंडा बनाया गया, ताहम इस बैठक का पूरा ब्यौरा जारी नहीं किया गया। बीते साल चरमपंथी कमांडर बुरहान वानी की सुरक्षा बलों के हाथों मौत के बाद घाटी में विरोध प्रदर्शनों की एक लहर फैल गई थी और 5 महीनों से ज्यादा समय तक घाटी के हालात इंतहाई अशांत रहे थे। 9 अप्रैल को श्रीनगर संसदीय सीट के लिए कराए गए उपचुनाव के बाद अब तक प्रदर्शनों में 10 व्यक्ति मारे गए हैं। बीते 2 हफ्तों से अब छात्र और छात्राएं सड़कों पर भारत विरोधी प्रदर्शन कर रहे हैं, जिसके बाद सरकार आए दिन स्कूलों और कॉलेजों में छुट्टी का ऐलान कर रही है। विरोध प्रदर्शनों और अशांति फैलते ही इंटरनेट सेवाओं को बंद कर दिया जाता है। कश्मीर की मौजूदा स्थिति सरकार और सिक्योरिटी एजेंसियों के लिए एक बड़ी चुनौती बनकर सामने आई है। माजिद जहांगीर, BBC श्रीनगर।
तनाव की स्थिति छत्तीसगढ़ के सुकमा में भी है। बीते सोमवार को यहां हुए नक्सली हमले में CRPF के 25 जवानों की मौत हो गई थी। BBC संवाददाता सलमान रावी फिलहाल सुकमा का दौरा कर रहे हैं और अभी फोन के जरिए सीधे कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं। कार्यक्रम में जुड़ने के लिए शुक्रिया सलमान जी। हम आपसे जानना चाहेंगे सुकमा में फिलहाल क्या स्थिति है, डर, सन्नाटा, खामोशी या कुछ और देख पा रहे हैं आप?
जी, ये डर, सन्नाटा, खामोशी, ये सुकमा कई साल से देख रहा है इसको। और अगर आपको याद होगा 2010 में जब ताड़मेटला का कांड हुआ था जिसमें 76 जवान मारे गए थे सुरक्षा बलों के जवान, वो तब से सिलसिला शुरू हो रहा है। और जैसा कि सब जानते हैं कि ये एक बहुत ही डिफिकल्ट जगह है जो जंगलों से घिरा हुआ है। इस जगह की टोपोग्राफी ऐसी है कि यहाँ पर आना या रीइन्फोर्समेंट्स को भेजना उतना आसान काम नहीं है। और कल भी जो देर शाम में कोया कमांडो को लेकर हेलीकॉप्टर जो चला था उसको क्रैश लैंडिंग करनी पड़ी, उसमें कुछ लोगों को चोटें आई हैं कोया कमांडोज को। यहाँ पर कॉम्बिंग ऑपरेशंस शुरू हुए हैं, नेटवर्क नहीं है पूरे इलाके में, इसलिए संपर्क एक दूसरे से करना बड़ा मुश्किल है।
आपका भी फोन मिलाने में बहुत दिक्कत हमें हुई है।
जी, ये कनेक्टिविटी नहीं है यहाँ पर, बहुत ही बुरा हाल है। सिर्फ BSNL की सेवा काम करती, वो भी कहीं कहीं पर, बाकी जगह चूंकि जंगलों के इलाके हैं वहाँ पर कोई कनेक्टिविटी नहीं है। लेकिन ये जो एंटी जो ये कॉम्बिंग ऑपरेशन चल रहा है वो उसी दिन से चल रहा है ताकि वो हथियार बरामद किए जा सके जो नक्सली लूट कर ले गए हैं सुरक्षा बल के जवानों।
सलमान साहब, हम आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि लगातार कॉम्बिंग ऑपरेशन जारी है, इधर CRPF को नए महानिदेशक भी मिल गए हैं, लेकिन जो ग्राउंड पर जो सुरक्षा बल तैनात हैं, जो काम कर रहे हैं, उनके मनोबल की क्या स्थिति है अभी?
मनोबल का तो अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 2 महीनों के बाद CRPF को एक नए DG मिले, यानी 2 महीनों तक कोई मुखिया था नहीं इस फोर्स का। यही हाल था ITBP का भी और यही मतलब ज्यादातर जो सुरक्षा बल हैं, लेकिन CRPF का जहां तक सवाल है, क्योंकि डायरेक्ट कम्बैट में, लड़ाई में, अगर एंटी नक्सल ऑपरेशन में किसी का सीधा इन्वॉल्वमेंट है तो वो CRPF का है। और यही वजह है कि अगर इस फोर्स का कोई मुखिया नहीं होता है तो इस बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि इनके प्रति कितनी सीरियस है अथॉरिटीज जो है, गृह मंत्रालय है वो, इसी की चर्चा चल रही थी आपस में। और जाहिर सी बात है कि जब बड़ा कोई कांड होता है, जब बड़ा हमला होता है और कैजुअलिटीज होती हैं तो मनोबल वाकई में थोड़ा सा तो उस पर असर पड़ेगा ही। और यही वजह है कि अभी भी मैं देख रहा था जब सुकमा की तरफ जब मैं आ रहा था, सड़क का काम रुका पड़ा है कई जगहों पर, क्योंकि सड़क का काम चल रहा था जिस काम में सुरक्षा बल के जवानों को लगाया गया था सड़क बनाने में, तो वो काम रुका पड़ा है। अभी सबको कहा गया है कि वो एंटी जो नक्सल ऑपरेशन है जंगल के अंदर जाकर, तो सड़क के ऊपर सुरक्षा बलों का कोई प्रेजेंस नहीं था, सबको जंगलों में भेजा हुआ है ताकि कॉम्बिंग ऑपरेशन चलाया जा सके।
जी सलमान जी, हम अगले कार्यक्रमों में फिर आपके पास आएंगे और अपडेट लेंगे। शुक्रिया। अब आगे बढ़ते हैं बात दिल्ली की। दिल्ली नगर निगम यानी MCD चुनाव के नतीजों का कल ऐलान हो गया। तीनों नगर निगमों में भारतीय जनता पार्टी ने जीत दर्ज की। दिल्ली में सरकार चला रही आम आदमी पार्टी 270 में से सिर्फ 46 सीट ही हासिल कर सकी। नतीजे के ऐलान के बाद आम आदमी पार्टी के नेताओं ने EVM यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन पर सवाल उठाया। BBC संवाददाता हरिता कांडपाल ने आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष से बात की और सबसे पहले यही पूछा कि क्या उनकी पार्टी सिर्फ EVM पर ही सवाल उठा रही है, हार पर आत्मचिंतन नहीं कर रही है?
जहां तक पार्टी के आत्ममंथन की बात है, जहां तक पार्टी की अपनी कमियों की तरफ देखने की बात है, वो आम आदमी पार्टी लगातार करती रही है। हम ये मानते हैं कि हम सब लोग इंसान हैं और हमसे गलतियां हो सकती हैं, हमारे अंदर ढेरों कमियां होंगी, उनकी तरफ हमारा ध्यान लगातार होता रहता है और उसमें हम कोर्स करेक्शन भी करते जाते हैं। लेकिन अगर इस देश के अंदर EVM की फंक्शनिंग पे शंका है तो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान के लोकतंत्र पर एक चिंता की लकीरें जरूर खिंच जाती हैं। इस ओर इशारा करना और इस मुद्दे पे लोगों को जागरूक करना लोकतंत्र को बचाने जैसा है।
ये बताइए कि जितनी बड़ी जीत के साथ आप लोग दिल्ली में विधानसभा चुनाव में आए थे, लोग इसे आपकी जो MCD में हार हुई है उसे बहुत बड़ी और ऐतिहासिक हार बता रहे हैं।
देखिए, लोग क्या कह रहे हैं ये महत्वपूर्ण हमारे लिए, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि ये इस चीज को भी परखना होगा कि आखिर ऐसा क्यों हुआ है। महत्वपूर्ण बात यह कि दिल्ली की सरकार ने पिछले दिनों जबरदस्त काम किया, चाहे वो पानी का मसला हो, चाहे वो बिजली का मसला हो, चाहे शिक्षा हो, चाहे स्वास्थ्य हो, इसकी चर्चा सिर्फ देश से नहीं बल्कि देश के बाहर भी चर्चा हो रही। कोफी अनान यूनाइटेड नेशन के सेक्रेटरी जनरल ने चिट्ठी लिखकर बाकायदा जो शिक्षा के मसले पर काम हुआ था उसकी सराहना की। उधर BJP है जो पिछले 10 सालों में एक भी उपलब्धि नहीं गिना सकती। पूरी दुनिया को मालूम है कि MCD को दिल्ली हाईकोर्ट भ्रष्टतम संस्था करार दे चुका है और उसके बारे में ये तक कह चुका है कि इसको बंद कर देना चाहिए। वहां पे भयानक लूट है, भयानक भ्रष्टाचार है। उसके बावजूद अगर BJP जीत जाती है भारी अंतर से और आम आदमी पार्टी हार जाती है तो इसका क्या कारण है? हमें कहीं ना कहीं समझना पड़ेगा कि आज टेक्नोलॉजी के जिस युग में है, वहां पिछले दिनों जिस तरीके से खबरें आई, जितनी भी EVM मशीनें गड़बड़ हुई उनमें सारे वोट BJP को जा रहे थे, तो ये दरअसल मोदी लहर नहीं बल्कि EVM लहर है और EVM के मैनिपुलेशन की गंभीर आशंका इस वक्त सबके दिमाग में है।
आप कह रहे हैं कि मोदी लहर नहीं EVM की लहर है। ये बताइए कि आप लोगों ने स्पेसिफिक दिल्ली के चुनाव को लेकर कई आरोप लगाए थे, तो जब आपकी बात नहीं सुनी गई थी आपने क्यों बहिष्कार नहीं किया MCD चुनाव का?
देखिए, हम लोकतंत्र का सम्मान करते हैं, लोकतांत्रिक प्रक्रिया का हम सम्मान करते हैं। हमारा मानना ये है कि लोकतंत्र का सम्मान करते हुए अपने मुद्दों को उठाएंगे, लोगों को जागरूक करेंगे, लोगों को बताएंगे। लालकृष्ण आडवाणी इस मसले को 2009 में ही उठा चुके हैं, तो ये कोई नई बात आम आदमी पार्टी कर रही है ऐसा नहीं है। 13 पार्टियां कांग्रेस के नेतृत्व में राष्ट्रपति के पास गईं, उनको ज्ञापन दिया और उनसे कहा कि बैलेट पेपर पे चुनाव होने चाहिए। तो जो लोग ये कह रहे हैं सिर्फ आम आदमी पार्टी मसला उठा रही है, दरअसल उनको समझना चाहिए कि आज सारी विपक्षी पार्टियां इस मसले पर लगभग एक मत हैं और चिंताग्रस्त हैं।
ये थे आम आदमी पार्टी के नेता आशुतोष। और श्रोताओं, आपको बता दें कि हमारे सहयोगी कीर्तिश ने कार्टून के जरिए MCD चुनाव पर दिलचस्प अंदाज में चुटकी ली है। अगर आप ये कार्टून देखना चाहते हैं तो रुक कर सकते हैं bbchindi.com का। और इस बीच हमारे साथी दिलनवाज पाशा सारे अखबारों के साथ तैयार हैं, पलट चुके हैं पन्ने। क्या खबरें हैं दिलनवाज दिल्ली से छपे
जी? वात्सल्य, आज तो अखबारों में MCD चुनावों का नतीजा ही है। कहीं मनोज तिवारी मुस्कुरा रहे हैं तो कहीं अमित शाह के गले में फूलों की मालाएं हैं। नवभारत टाइम्स लिखता है जीत नई BJP की, तो हिंदुस्तान की का शीर्षक है भाजपा की हैट्रिक आप बोल्ड। दैनिक भास्कर बता रहा है कि दिल्ली में भाजपा की सीटें 31% बढ़ी हैं और 2 साल में आम आदमी पार्टी के वोट 51% घट गए हैं। इसके अलावा
51% घट गए या 51% से घट के 26% पर आ गए,
ये अखबार का शीर्षक है, गलत हो सकता है, मैंने पूरा नहीं पढ़ा, लेकिन ये कह रहे हैं 2 साल में 51% घट गए हैं आम आदमी पार्टी के वोट। और ये जो MCD में भाजपा को प्रचंड बहुमत मिला गया है, बड़ी प्रचंडता से आज सभी अखबारों में प्रकाशित है। इसके अलावा एक और खबर जो ध्यान खींच रही है वो ये है कि कृषि की आय पर टैक्स नहीं लगेगा, ये वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कहा है और ये खबर अलग अलग अखबारों में पहले पन्ने पर है। आमदनी की जंग हारा BCCI भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड, अमर उजाला बता रहा है ICC बैठक में राजस्व मॉडल पर हुए मतदान में मिले सिर्फ 2 वोट। इसके अलावा भारतीय सेंसेक्स पहली बार 30,000 के पार पहुंचा है, ये खबर भी आज सभी
शेयर बाजार में अच्छे दिन
जी शेयर बाजार में अच्छे दिन ये जो है अखबार बता रहे हैं। और एक और खबर है द इंडियन एक्सप्रेस के मुताबिक सुकमा में जो चरमपंथी ये नक्सलियों का हमला हुआ जिसका जिक्र हमारे संवाददाता सलमान रावी भी कर रहे थे, उससे जुड़ी खबर है। सीआरपीएफ के डीआईजी का कहना है कि वो राज्य सरकार से सड़क बनाने में जल्दी करने का आग्रह करते रहे, लेकिन इसे अनसुना कर दिया गया। और उधर कश्मीर में सोशल मीडिया वेबसाइटों पर पाबंदी लगी है, ये खबर आज के सभी अखबारों के पहले पन्ने पर है। जी वासिल,
और एक खबर के बारे में मैं आपको जानकारी देना चाहूँगा। गूगल मैप में एक नया फीचर है जिससे पार्किंग में कार ढूंढना आसान हो जाएगा, इसको भी अखबारों में जगह मिली है। शुक्रिया दिलनवाज पूरी विस्तृत समीक्षा के लिए।
नमस्कार भारत, शॉर्टवेव 49, 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 6155, 7995, 9915 और 11995 किलोहर्ट्ज और मीडियम वेव 1413 किलोहर्ट्ज पर।
और अब बात फ्रांस की। दूसरे विश्व युद्ध के बाद पहली बार ऐसा हुआ है कि फ्रांस की मुख्य राजनीतिक पार्टियां राष्ट्रपति चुनाव के पहले दौर में ही बाहर हो गई हैं। अब मुख्य मुकाबला दो ऐसे उम्मीदवारों के बीच है जिनकी पार्टियों को हाल तक राजनीतिक रूप से बहुत दमदार नहीं माना जा रहा था। फ्रांस लंबे समय से अपनी उदार छवि के कारण दुनिया भर में विख्यात है, लेकिन हाल के वर्षों में वहां चरमपंथी घटनाओं ने लोगों को चिंता में भी डाला है। तो क्या इन चुनावों के बाद उसकी तस्वीर बदल सकती है? फ्रांस के चुनाव से और क्या सवाल उठ रहे हैं? दुनिया जहान में निखिल रंजन ने इस हफ्ते यही जानने की कोशिश की है।
दुनिया जहान।
दुनिया के पुराने लोकतंत्रों में ऐसा कम ही होता है जब स्थापित राजनीतिक दलों में से सभी को एक सिरे से जनता नकार दे। यूरोप की तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के लोग अपना अगला राष्ट्रपति चुन रहे हैं और अब दूसरे दौर में इमैनुएल मैक्रों का मुकाबला मरीन लपेन से है। इन दोनों उम्मीदवारों ने पहले दौर में 9 उम्मीदवारों को पीछे छोड़कर दूसरे दौर में जगह बनाई है। मरीन लपेन की पृष्ठभूमि जरूर राजनीतिक रही है, लेकिन मैक्रों की पार्टी का जन्म हुए तो अभी एक साल भी नहीं हुआ। दिल्ली की जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में सेंटर फॉर यूरोपियन स्टडीज के प्रोफेसर आर के जैन,
60 वर्ष में पहली बार कोई भी मेन स्ट्रीम पार्टी जो है पहला दौर पार नहीं कर पाई है। आर्थिक चुनौतियां हैं, राजनीतिक चुनौतियां हैं, सिक्योरिटी कंसर्न्स हैं, इमिग्रेशन और एंटी इस्लामाइजेशन के ऊपर। अब इन कारणों की वजह से मैक्रोन जो है उभर के आए हैं एक प्रकार के राजनीतिक नो सीखिए के रूप में, और जो उनकी नई जो राजनीतिक दल है जो सिर्फ अप्रैल 2016 के बाद जिसका जन्म हुआ ऑन द मूव ऑन मार्शे, इसकी एकदम चढ़त जो है एक प्रकार से अजीब है। फ्रेंच वोटर्स जो है मेन स्ट्रीम पार्टी से अप्रसन्न होकर मैक्रोन को उन्होंने अपना समर्थन दिया। दूसरी ओर लपेन है, लेकिन मौलिक रूप से वो ग्लोबलाइजेशन के विरुद्ध हैं, ईयू के विरुद्ध हैं, इस्लामिक फंडामेंटलिज्म और इमिग्रेशन के खिलाफ हैं।
फ्रांस के बाहर लोगों को हैरानी इसलिए भी हो रही है कि आखिर जब देश में चरमपंथ सिर उठा रहा है, प्रवासियों की समस्या ने लोगों की नींद उड़ा रखी है, अर्थव्यवस्था डामाडोल है, तो फिर एक उदारवादी नेता के पीछे देश क्यों चल पड़ा है? वरिष्ठ पत्रकार रणवीर नायर करीब 2 दशक से फ्रांस में रह रहे हैं।
क्योंकि फ्रांस एक निहायत ही सोशलिस्ट और उदारवादी देश रहा है पिछले करीबन 100 सालों से, और आप देख सकते हैं कि आज मारीन लपेन जो कि एकदम ही चरमपंथी पार्टी की रिप्रेजेंटेटिव है, उनको 38 से 40% तक सपोर्ट मिला है फ्रांस में दूसरे दौर के लिए। ये एक अचंभा है, लेकिन फिर भी 60% लोग जो है वो अभी भी अपने ट्रेडिशनल व्यूज पे कायम है कि हम सब एक हैं।
पहले दौर में सबसे ज्यादा वोट पाने वाले इमैनुएल मैक्रों मध्यमार्गी, आधुनिक और उदार माने जाते हैं। कहा यह भी जाता है कि उन्हें आगे बढ़ाने में मौजूदा राष्ट्रपति फ्रांसवा ओलांद की बड़ी भूमिका है। यूरोपीय संघ के हिमायती नए कारोबारियों की पसंद, प्रवासियों और अर्थव्यवस्था के प्रति नरम रुख रखने वाले पूर्व बैंकर मैक्रों को फ्रांस के बड़े और औद्योगिक शहरों में काफी सफलता मिली है। राजधानी पेरिस भी इनमें से एक है। मैक्रों के उलट मरीन लपेन देश में बढ़ते चरमपंथी हमलों को ज्यादा बड़ी चुनौती मानती हैं, और उनके चुनाव अभियान में भी सारा जोर इसी से लड़ने पर है।
मैक्रों चाहते हैं कि फ्रांस न केवल यूरोप में रहे बल्कि यूरोप को और मजबूत बनाए। मरीन लपेन चाहती हैं कि यूरोप बहुत ज्यादा मजबूत हो चुका है और उस पर फ्रांस के अपनी एक तरह से जो सॉवरेनिटी है वो कम हो गई है, तो वो चाहती हैं कि यूरोप को थोड़ा नियंत्रण किया जाए और जो फ्रांस की सरकार है उसमें ज्यादा पावर आना चाहिए। दूसरा है मरीन लपेन ने बताया कि वो यूरो से बाहर जाने के लिए एक रेफरेंडम करेंगे और फ्रेंच फ्रैंक को जो कि 1999 में हटा दिया गया था यूरो के आने के बाद उसे वह वापस लेके आएंगी। मैक्रों का कहना है कि वो यूरो को बरकरार रखें क्योंकि यूरो के आने से फ्रांस की इकोनॉमी को काफी बढ़ावा मिला है, काफी सपोर्ट मिला है और वो चाहेंगे कि फ्रांस का इंटीग्रेशन यूरोपियन यूनियन के साथ और बढ़े। तीसरा, मैक्रों कहते हैं कि वो माइग्रेशन के ऊपर कोई रोकेंगे नहीं, नियंत्रण तो रखेंगे लेकिन मरीन लपेन चाहती है कि वो उसको तुरंत रोक दिया जाए और उसके बाद ज्यादा से ज्यादा 10,000 लोगों को ही हर साल आने की परमिशन दी जाए फ्रांस में।
पहले दौर के चुनाव के बाद हुआ पहला सर्वेक्षण बता रहा है कि इमैनुअल मैक्रों को दूसरे दौर में करीब 62% वोट मिल सकता है। मरीन लपेन का धुर दक्षिणपंथी होना मैक्रों के लिए फायदेमंद भी है और मौजूदा दौर में सबसे बड़ी चुनौती भी। बहुत से लोगों को ये भी लग रहा है कि फ्रांस दो हिस्सों में बट गया है, कुछ कुछ अमरीका की तरह।
ये जो 40% की जो मैंने बात की है जो कि मरीन लपेन के साथ अब जुड़ गए हैं, ये उन क्षेत्रों में से हैं जहां पे पहले मतलब इंडस्ट्री का काफी प्रभाव था और अब वहां के इंडस्ट्रीज बंद हो चुके हैं या बहुत प्रेशर में हैं, तो वहां पे काफी अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ गया है पिछले 5-6 सालों में। दूसरी तरफ आप मैक्रों का सपोर्ट देखेंगे तो ये ज्यादा आया है बड़े बड़े शहरों से, जैसे पेरिस में काफी अच्छा सपोर्ट बेस है। लेकिन दक्षिण फ्रांस में आप फिर से जाएंगे जहाँ पे अप्रवासी अरबिक पॉपुलेशन ज्यादा है, तो वहां पर देखेंगे कि मरीन लपेन के लिए सपोर्ट काफी ज्यादा है। वहां पे जो कम्युनिटीज हैं उन्हें एक तरह से खतरा लग रहा है कि ये माइग्रेशन के कारण जो कि काफी बढ़ चुका है पिछले 5-6 सालों में, उन पर एक दबाव आया है, उनका अपना फ्यूचर खतरे में उन्हें नजर आ रहा है।
नीदरलैंड्स के चुनाव में भी दक्षिणपंथी पार्टियों के उदय की उम्मीद जताई गई थी लेकिन नतीजों ने सब उलट दिया। इस वक्त फ्रांस भी उन्हीं सवालों से जूझ रहा है। फ्रांस के इस चुनाव में उसकी पहचान और यूरोप की नई तस्वीर के रंगों का भी खाका तैयार होने की बात कही जा रही है। कुछ सवाल और हैं जिनके जवाब इस चुनाव में ढूंढने की कोशिश हो रही है।
पहली बात तो यह है कि यूरोप का भविष्य क्या होगा। फ्रांस जो कि एक फाउंडिंग मेंबर है यूरोपीय संघ का, यदि वो चरमपंथी की ओर और यूरोपियन यूनियन के विरुद्ध जाता है तो समस्त यूरोप का भविष्य जो है वो डावाडोल है।
चुनाव जीतने पर इन दोनों उम्मीदवारों के सामने सवाल होगा संसद में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को पहुंचाना। मैक्रों की पार्टी का तो संसद में कोई अस्तित्व ही नहीं, दूसरी तरफ मरीन लपेन की पार्टी के भी सिर्फ 2 सदस्य ही संसद में हैं। अगर इनमें से कोई जीत भी गया तो उसके लिए अपनी नीतियों को लागू करवा पाना मुमकिन नहीं होगा। नेपोलियन का देश दुनिया भर में अपनी खास जीवन शैली, उदार सोच और सांस्कृतिक महत्व के लिए विख्यात है। यूरोप जाने वाला हर सैलानी अपने दिल में पेरिस देखने की तमन्ना लेकर जाता है, लेकिन हाल के दिनों में इसने लोगों में थोड़ी आशंकाएं भी पैदा की हैं। ये सवाल फ्रांस के बाहर भी पूछा जा रहा है कि मौजूदा चुनौतियों में क्या फ्रांस अपनी पहचान बरकरार रख पाएगा। निखिल रंजन, BBC, दिल्ली।
दुनिया जहान पर आपकी राय का हमें रहेगा इंतजार। और आपको बता दें कि कल IPL में कोलकाता नाइट राइडर्स ने सुपर जायंट्स पुणे को 7 विकेट से हरा दिया। कोलकाता के लिए 87 रन बनाने वाले रॉबिन ओथप्पा मैन ऑफ द मैच चुने गए और इसी के साथ KKR ने पॉइंट टेबल में पहला स्थान बना लिया है। आपसे विदा लें उसके पहले एक बार फिर सुन लीजिए मुख्य समाचार दिलनवाज पाशा से।
उत्तर कोरिया के खतरे के मद्देनजर ट्रंप प्रशासन ने देश के सीनेटर को इस मुद्दे पर जानकारी दी है जिसमें कोरिया से निपटने के लिए कूटनीतिक दबाव बनाने और आर्थिक प्रतिबंध लगाने की नीति भी जाहिर की गई है। वेनेजुएला ने कहा है कि वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ अमेरिकन स्टेट्स से अपनी सदस्यता वापस ले रहा है। शोधकर्ताओं का कहना है कि एक सस्ती और आसानी से उपलब्ध दवा बच्चों के जन्म के दौरान रक्तस्राव से होने वाली मौतों में 1/3 की कमी ला सकती है। तुर्की के पुलिस बलों का कहना है कि पिछले साल हुए तख्तापलट के नाकाम प्रयास के पीछे माने जा रहे धर्मगुरु से संबंधों के शक में 9,000 पुलिसकर्मियों और अधिकारियों को निलंबित किया गया है। BBC समाचार।
नमस्कार, भारत में आज इतना ही। स्टूडियो का संचालन किया देवाशीष कुमार ने। आपसे अगली मुलाकात शाम 7:30 बजे दिन भर में होगी। बदलती खबरों के लिए तब तक आपके साथ है हमारी मल्टीमीडिया वेबसाइट bbchindi.com। वात्सल्य राय को दीजिए अनुमति। नमस्कार।